ठीक हो गए हैं कुछ
75% से ही
ठीक है जल्दी से ठीक बैठ हाँ बांग्ला तो बोलो
Thank you.
চারবার গেছি তীর্থ মহারাজ কিছু বলবেন।
বম্বই
जैसे जैसे वातावरण की स्थिति आई
कितने श्लोक कंठस्थ हैं ऐसा कहना है। नहीं
क्यों नहीं होगा, मुझसे प्रभु जी ने मना करे तुम बात मत करो मेरी
चलिए
प्रभु जी करे मेरी बात इसलिए बाबू जी से मना कर दी मैंने बाबू जी से मना करी बाद में काम लगा उसके बाद मैं कल आप डिस्कस करूंगा बाबू जी से फिर दोबारा करता हूँ मैंने किया नहीं मेरी चप्पल आ गया मैंने प्रभु जी मना करी तुम बात
ऐसे भी देने के लिए भी कहा आज कल करते हुए अंदर से भी बात करेंगे
Oh. सुनो क्या हरिकथा से सुना तो इसलिए ये सब सुना करता था। जब कभी मैं गुरु महाराज के पास में गया तो उस समय वे वेदांत से अतिरिक्त तो कोई बात ही नहीं करते, हमेशा वेदांत की बात करते और कहते थे क्या रामानुज स्वामी श्रीमद मध्वाचार्य श्री शंकराचार्य ये सभी लोग थोड़े थोड़े उम्र में ही संन्यास लिए और सारे विश्व में प्रचार किया, विश्व गुरु बने हैं, स्वर्ग पर प्रचार किया और क्या कहते थे उत्साह देते थे, देखो ये लोग किसे प्रचार किए, उनके कैसे थ्योरी और कैसे विचार थे इनको सुनना। हमने एक बार प्रश्न किया गुरु जी मैं आपसे अधिक समय आपके पास रहने का और ना ही मैं आपसे कुछ सीख पाता, मैं तो महाराज के पास में रहता तो मैं क्या करूं, मेरे मन में होता है आपसे भी आपके पास जो विद्याएं हैं आप उनमें से कुछ हमें मिल जाए तो हमें कैसे मिलेगा, हम तो आपसे कुछ सीख नहीं पाए। महाराज जी बोले, गुरु जी बोले कि देखो तुम जिनके पास में हो वे हमसे कोई दूर नहीं अलग कभी, हम और भी महाराज जी हम तो एक हैं, उनकी शिक्षा उनके पास जो कुछ सीखोगे वही हमारी शिक्षा है, कभी भी भेद नहीं देखा, जिस दिन भेद देखोगे उस दिन सर्वनाश रहेगा, कभी हमारे उनके बीच में भेद नहीं थी। एक समय वे एक शाल लेकर के आए, उस समय नवद्वीप के गेट के पास जो ऊपर का टोटल हमने जो टोला था महाराज जी वही करते उस कमरे में आए, आते जल्दी से जल्दी मैं कुर्सी लेकर के आया और आसन लगा, महाराज जी नहीं आसन उठा करके कुछ में रखी, तो इतने में गुरु जी आते तो आकर के बोले कि नहीं हम इस पर नहीं बैठे आसन, महाराज जी का आसन इस पर हम नहीं बैठे, तो इस प्रकार मान गए और इतना आनंद। फिर महाराज जी को साल बाद बड़े प्रेम से बातें की और बहुत सारी बातें, तो हमने देखा कि किस प्रकार मर जाते हैं। उन्होंने कहा हमारे जितने गुरु भाई है कभी भी उनको कोई कोट वजन या कोई तिरस्कार बात तो कभी नहीं किया और सबको आदर देना सीखा, उनको आदर देना ही उनको सम्मान देना ही हमारी सेवा है हमारी क्रिया है, हमें उनसे कभी अलग नहीं करना और हमेशा उनकी शिक्षा रखनी। प्रिय गुरु वैष्णव तीनों में से एक को छोड़कर दूसरे की सेवा किया कभी सफल नहीं होगा, तीनों को ही मानना होगा, कोई गुरु को मानता है वैष्णव को नहीं और कोई हरि को मानता है गुरु को नहीं और कोई गुरु को ही हरि मानता है या कोई वैष्णव को मानता है गुरु को नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हरि गुरु वैष्णव ये तीनों का एक को एक संबंध है, तीनों को लेकर के चला। इस प्रकार गुरु जी कहते हमेशा ये जब कभी आप कुछ न कुछ नई नई शिक्षा दिया करते थे, बहुत सारी बातें बहुत सारी कथा आज सत्र तो नहीं करते। इस समय गुरु जी ने सत्राज को भी बताया अरे जब ये लोग आएंगे मथुरा से तब तो हमें याद करा देना, तो उस समय हम लोग जैसे ही पहुंचे हरिद्वार में तो मैं और बाबू महाराज जी हम दोनों जाकर के गुरु जी के चरणों में जैसे ही हमने प्रणाम किया साथ ही साथ मैंने पकड़ लिया बोले बोलो इस प्रश्न का उत्तर, उनके मन में इच्छा थी और उन्होंने कह रखा था बड़ी इच्छा करेंगे इनको ये लोग मार्गी मार्ग रहते हैं देखेंगे, तो उस समय उन्होंने प्रश्न किया पूछा बोले महाप्रभु जी को कौन से रस में सेवा दी जाती है। उस समय हमने प्रणाम करके कहा जी श्री भक्ति में जब ठाकुर जी ने जो बात कही है उनमें तो सीधा सीधा ये लिख दिया महाप्रभु जी को सदैव दास रस से सेवा की जाए, उनको दास रस से सेवा की जाए ये बातें हैं। तो अब बात तो लिख दी गई शांत दास स्वर्ग वास और आकाश के भूत जे छे हर का तम आकाश के भूत जे छे जैसे एक एक में एक एक गुण शब्द गुणन का आकाश वाय स्पर्श शब्द गुणन का आकाश के गुण जे छे पर पर होते तो ऐसे मिट्टी में पांच गुण तो मधुर रस में पांच गुण मिलते और दास रस में कुल अभाव है और तो संपूर्ण नहीं होता है। तो कोई भी भक्त जो कोई मधुर रस में सेवा कर रहा है और भजन कर रहा है वो क्यों दास रस में जाएगा, वो क्यों भी जम गएगा, ये कभी संभव नहीं हो सकता। वहां पर भी जो है विप्रभु रस की मूर्ति और वे स्वयं कृष्ण है, राधा भाव में विवाहित है, उस भाव में विप्रभु रस का स्वागत वे आस्वादन कर रहे। तो विप्रभु रस की मूर्ति स्वयं कृष्ण ही है और कोई नहीं है, राधा भाव के द्वारा आच्छादित धर्म है। तो परंतु जो कोई मधुर रस के भक्त है वो मधुर रस में ही रह करके उस विप्रलंबर भाव में मधुर भाव में सेवा करते हैं, मधुर भाव में भी दास भाव में और वास्तव में भी दास भाव में। उस समय मैंने एक श्लोक उठाया और श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा था, श्राद्ध बोले कि देखो मैंने उस समय जैसे कहा अभी मत मधुर बोल लिया बाल्य दुख का अर्थात स्मरण स्व पितृ के हम सोम बंधुष्ट होगा। इस श्लोक में राधा जी अपने को कह रही है इन दीना दासी कृपणा दासी के शिव पर या के वे श्री कृष्ण बलि अग्र सुगंध तो भजन को अर्पण करेंगे यहाँ लौट के आए। तो राधा जी क्या दासी है, राधा जी दासी तो नहीं, उच्च रस के सम्राट की वे दासी नहीं है, महाभाव स्वरूप है तो कैसे दासी बन सकती। परंतु भी हम विप्रलोक में जा करके इतने दिव्यता भाव है जहां अपने को दासी मान रही। ऐसे ही नंद महाराज जो कि अपने को दास मान रहे हैं एवं कर्मो ही ब्रह्म मानने में इसको मुझे भी भूल हो जाता है। एवं कर्म भी ब्रह्म जत्र कापि सरे छया उस श्लोक में वर्णन है कि जहां कहीं हो दास भाव से मैं देवता हूं की सेवा करता हूं। तो नंद महाराज जी दास नहीं है, उनके अंदर दास का रस नहीं है, दास भाव विरह कर्मों में ये दास भाव है। तो सभी रस के भक्त उस प्रकार विरह विप्रलंब मूर्ति महाप्रभु को दास भाव से सेवा करते हैं। इसी प्रकार समय समय पर जिन्होंने उन्होंने बहुत सारी बातें सिखाई और हमेशा ये प्रेरणा देते रहे। ऐसे जो अति मंडल महापुरुष वे कहते थे मधुगुरु श्री जगत गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगत गुरु, ऐसे जगत गुरु अति मंडल महापुरुष आज हम सब पर कृपा अनुग्रह है। वे अभी कुछ दिन पहले की बात की जबकि वे बोले मैं मेरे पास कोई समय नहीं, उधर ठाकुर जी की सेवा में सदा लगा रहता, इधर गुरु की सेवा में मेरे पास कोई फुर्सत नहीं। लड़के लोग पूछने लगे गुरु जी आप तो इस प्रकार बैठोगे तब क्या होता है, तो किसी लड़के के समझ में नहीं क्या क्या शब्द का तात्पर्य है। ठाकुर जी जाने ही प्रार्थना दादाजी की सेवा में नित्य सेवा में जरा सदा सर्वदा सर्वत रहे हैं। सेवा में सदा सर्वदा रहते हैं। ऊपर से लोग देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, यह सारे रह रहे हैं, पीने रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो भौतिक स्वरूप को देख रहे हैं, परंतु यही भौतिकता में नहीं, अवतार की चिन्हमय स्वरूप जो कि नित्य लीला में सदैव सेवा में संलग्न आए।
अभी श्रीमान भक्ति वेदांत भन महाराज जी उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। संक्षेप में सब लोग बोलो, क्योंकि वक्ता बहुत अधिक हैं। बैठाओ
इस संसार में आते कुछ उपहार लेकर के, और वो उपहार जीवों के लेकर के जाते हैं, किंतु उनके जो उपहार एक भी साधन उपहार नहीं। जिस प्रकार से महाप्रभु गौर सुंदर अपने मांग में अनेक समय
आप स्वस्थ
ठीक है। श्री महाराज के सानिध्य में
आते थे कि जी आदेश दीजिए हमारे पास आते थे कि आदेश दीजिए मैं हरि नाम दू ওরা বুঝল না কেউ আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ছিল অনেকেই বুঝতে পারে না ওর ভোগ ভোগ করবে
अपने गुरु ज्ञान करके श्रीराम महाराज के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मैंने देखा वो अपने आंखों से और श्रीराम महाराज भी उनको भी उसी प्रकार आदर करते थे अर्थात गुरु भ्राता के प्रति किस प्रकार व्यवहार आज तो जो हम लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं थोड़ा सा दिन बाद देखते हैं क्या करते हैं आज विरोध तिथि मनाने के लिए हम लोग आए हैं किंतु वही स्मृति आदत है जिसको महाराज के प्रति
गुरु महाराज जी ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश देते थे
और मैंने देखा महाराज के प्रति कितना प्रगाढ़ श्रद्धा, अपने गुरु ज्ञान से उनकी आती थी। तो सन्यास लेने के समय गुरु महाराज जी यह भी बोले, गुरु महाराज बोले आप सन्यास मंत्र बोलो और महाराज जी बोले आप बोलो। हमारे गुरु महाराज जी कितने उदार, अपने को अभिमान नहीं रखते हैं, वास्तव चीजें दिखा जाए अभिमान सुंदर हृदय। श्री महाराज जी अंत बोले आप बोलो आप बोलो, अंत बोले महाराज जी चलो दोनों एक साथ में बोलेंगे। श्री महाराज जी और गुरु महाराज से गुरु महाराज तब भी देने के प्रतिमूर्ति नहीं आप ही बोले, तब गुरु महाराज श्री महाराज जी बोले तो फिर गुरु महाराज जी उसमें भी रिपीट करें।
वृद्धा प्रतिष्ठा के संबंध में हम वो कहते थे जी आप बोलिए हम उसको दोहराएंगे। संन्यास मंत्र देने के समय में भी वो कहेंगे जे आप दीजिए हम दोहरा देंगे। सब समर्थ होते हुए भी हमको कितना सम्मान देते थे ये वर्णन के बाहर है।
इतनी तक है जैसे से वक्ता ने यही बताया, गुरु महाराज जी बोलते थे कोई वैष्णव के चरण अपराध जिस करे अपना गुरु भाई की कोई समालोचना करे मैं उनको मुख देखना नहीं चाहता। स्मृति आ जाती है आज से करीब 8-10 साल पहले की कथा, चुचुड़ा में एक ब्रह्मचारी श्रील महाराज जी के बारे में कोई शब्द बोले, गुरु महाराज जी के निकट वो शब्द जाकर बोले गुरु महाराज जी उसके अभी मन से निकाल दिया जाए नहीं तो मैं कभी चुचुड़ा मठ में नहीं जाऊंगा। महाराज की याद मेरे याद है, फिर वो आकर के चुचुड़ा से नवद्वीप में आकर के गुरु महाराज के चरण पकड़ कर रोने लगे, मेरा क्षमा हो गया ए, मेरा अपराध हो गया आप क्षमा करें। गुरु महाराज बोले देखो मैं क्षमा करने के वाले नहीं हूँ, जिसके चरण में तुमने अपराध किया उसके पास जाओ और ऐसे नहीं जाने से नहीं होगा, वो लिख दे कि तुमको मैं क्षमा कर दिया। तो मेरा याद है वो ब्रह्मचारी उसी रात में ट्रेन पकड़ करके श्री महाराज के निकट में आए और महाराज के चरण पकड़ कर रोने लगे। मैंने देखा, मैं दीक्षा करके आके देखा महाराज के करीब 11:30 बजे महाराज के चरणों में बैठे हुए हैं और इसके बाद माता महाराज जी ने नवीन प्रभु मुझे सुनाया ऐसी सी बात हुई। फिर महाराज जी लिख करके दिया, महाराज इसको आप क्षमा कर दीजिए, बालक है छोटे बालक, माँ के गोद में राजा ने कैसे पिशाब टट्टी कर लेते हैं, माता पिता उसको सहन कर लेते हैं। और महाराज के पत्र लिख दिया और फिर वो लोग लेकर के जब नवद्वीप में पहुंचे तब गुरु महाराज जी शांत। हमारे गुरु महाराज जी इसी प्रकार कभी वैष्णव कोई निंदा करे सहन कर सकते। और भी थोड़ी एक कथा भी आप मेरा याद आ सकते हैं, गुरु महाराज कैसे दैन्य के प्रतिमूर्ति है, ज्यादा दिन की कथा नहीं है ये, ईश्वर के साथ जब कुछ ऐसे टर्मन होने कुछ होने लगे और उस समय कोई स्वामी महाराज के शिष्य नाम लेना नहीं चाहता हूं, वो हमारे गुरु महाराज के निकट आकर के बोले जे श्री महाराज के नाम लेकर के जाकर के बोले विदेश में जाकर के हमारे प्रभुपाद प्रचार करते हैं जनपुर गुरु महाराज बोले हरे कृष्ण। गुरु महाराज कोई वैष्णव निंदा करते सुनना नहीं चाहते, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी जाना नहीं चाहते। तो गुरु महाराज जी बोले देखो हमारे गौड़ीय वेदांत संघ के सेक्रेटरी जो है वो सब कुछ है उसके पास जाकर के आप अपील करें तो हो सकता है कुछ कर। तो वो आकर के हमारे कृष्ण कुमार मधुसूदन महाराज के निकट बोले अरे बताओ आपके गौड़ीय वेदांत संघ के सेक्रेटरी कौन है। उस समय श्रील महाराज जी प्रवचन दे रहे नाटक मंदिर मंदिर में, मैं उस समय मौजूद था देखा और कृष्ण कुमार बोले देखो वो नाटक मंदिर में जो बैठे हुए हैं वही गौड़ीय वेदांत समिति के सेक्रेटरी, बस बोला जिसके बारे में मैंने बोले हैं वही है। तो हमारे गुरु महाराज का वैष्णव निंदा न किसके सुनना नहीं चाहते थे, इसने कहा हजार तो कोई और कैसे जैसे से आपने अभी वक्ता ने यह बताया जो आप कोई प्रवचन देते थे विशेष करके श्राम धर्म कार्य में बोलते थे और धनाधम बोलते थे 2-4 घंटा तक बोलते थे और श्लोक कैसे एक सुंदर रूप में सुरेली कंठ से और श्लोक बोलते थे उनके कोई प्रांत करना अथवा श्री महर्षि संग भी कहते हैं जे कभी कोई श्लोक हम लोग भी भूल जाते हैं कुछ कोई बोल देते हैं किंतु श्री गुरु महाराज के जो है वही श्लोक यही बोल तनिक भी रूपा करते हैं। श्रील गुरु महाराज की इसलिए सभी बातें श्रील महाराज के मुखारविंद से अपने श्रवण किया उनके बातें डिक्शनरी कौन इस श्लोक कभी भी पूछे कहां के श्लोक कौन सा उपनिषद कहां के श्लोक है सब बता देंगे इसी प्रकार गुरु महाराज के पति मर्थ चरित्र गुरु महाराज कभी कोई आहस्त करने के बाद देखा था इसका गुरु महाराज जी आहस्त पर मथुरा मन में मौजूद थे और उस समय इसका महाराज गुरु महाराज महाराज जी बोले आप राधापुत्र के बारे में कुछ बोले और गुरु महाराज ने आप ही बोले इसलिए गुरु महाराज बोले देखो आप तो राधा जी के जान है आप ब्रज में रहते हैं राधा जी के नित्य गीत गा रही हैं ऐसे से गुरु महाराज सब बोले आपके मुख से सुनने से मेरा लाभ और श्री गुरु महाराज बोले श्री महाराज नहीं नहीं आपसे मुखारविंद में सुनना चाह रहा हूँ और तो मैं दोनों में ऐसी कुछ बात होने लगे बहुत बीच में शब्द होने लगे अंत में श्री महाराज जी का बार बार अनुरोध करने लगे मेरे ख्याल से गुरु महाराज जी पंद्रह मिनट केवल राधा तत्व के बारे में बताया उनके साथ ही का गुरु महाराज जी बताया भक्ति प्रणव ठाकुर के एक कीर्तन के लेकर के उन्होंने व्याख्या किया আমি তো রাধার ভক্ত পাতি সদা যে জন সে জন ভজে যেভাবে সেভাবে ভজে রাধা আমি তো রাধার ভক্ত পাতি সদা অর্থাৎ ভক্তি ঠাকুর এই কীর্তন কি শ্লোক মহারাজ কেবল ইতনে তো ব্যাখ্যা দি কি যে মে কেবল রাধা পক্ষ কে পা আর রাধা পক্ষ ছোড় করকে আর কহীন ভি কোই যা মে তো উনকে মুখ দর্শন করা নেই চাহতা इसी प्रकार गुरु महाराज अत्यंत संक्षेप में और सार रूप के लिए राधा और व्याख्या करते थे महान व्यक्ति के हृदय को समझना बहुत कठिन होता है जिस प्रकार लोग सही करते भाव बहुत लोग समझ नहीं पाए जैसे विरह की कथा हम लोग सुनते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब पाठ करते थे सबके हृदय में सत्य विकार बाहर से दिखाई पड़ता है रूप गोस्वामी बात के जैसे नहीं दिखाई नहीं पड़ता किंतु बाद में पता चला ठीक उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज ये सूत्र रस तत्व आदि विचार राधा के भाव गंभीर ये सूत्र विचार के इतने सुंदर और सरल भाषा में बोलते थे साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं इसलिए आज गुरु महाराज के चरण में और श्री महाराज के चरण में मैं यही पुष्पांजलि देता हूं ये जन्म जन्म श्री महाराज के अनुगत्य में अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के अभिलाषा हो और कुछ नहीं चाहता हूं श्री गौरव गुरु महाराज जी हम लोग भी आदेश दे जैसे पूर्वक जी बोलता ने बताया हम लोग भी गुरु महाराज जी ऐसे बोले जब श्री महाराज जी नाम महाराज के अनुगत में ही भजन साधन करो उनसे कभी अभिन्न मुझे मत सोचो गुरु महाराज जी एक ही शब्द बोलते दीक्षा गुरु और अभिन्न अभिन्न सोचो अर्थात पार्थक्य एक ही है दीक्षा गुरु के जानी ताहर स्वरूप शिक्षा गुरु के दीक्षा गुरु के जानी ताहर रूप शिक्षा गुरु के जानी ताहर स्वरूप अंतर जानी भक्त श्रेष्ठ एक ही रूप गुरु महाराज इसी के चैतन्य चरितामृत के इसी पैर के और प्रभुपाद के व्याख्या हम लोग लेकर श्रवण कराते थे इसलिए और गुरु महाराज जी एक श्लोक कोट करते थे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में मेरे यह है बिल्वमूल ठाकुर के कृष्ण परमामृत के प्रेम दंश में काम दंश में वेद दंश में सेवा की पराकाष्ठा और वैशिष्ट्य दिखाते हैं मंत्र इसलिए आज श्री महाराज के चरण कमल में तथा उसमें गुरु आप उनके चरण कमल में बार बार नमन करते हैं विधि कृपा करें जन्म जन्मांतर में सेवा करते अभिलाषा के लक्षण
श्रीमान सप्तराज कुछ बांग्ला भाषा में ही बोलो इन्होंने बहुत सेवा की है भगवान महाराज दिन रात जग कर उनकी शारीरिक सेवा भी की है और आदेश को पालन करने के लिए चैतन्य चैतामृत और बहुत से ग्रंथों को सब प्रकाशन जितना हुआ है ये सत्यराज ने इसलिए उसके बामन महाराज जी के ये दक्षिण हस्त हैं कहने में भी कोई अतिक्ति नहीं बोलो, खुजली हो रही है मुख में?
मैं स्त्री हूँ ना, इसलिए हर जगह से वंचित है।
मेरा जोर से बोलो।
स्त्री होने के कारण मैं कई सारे अभागियों की परंपरा में मुझे शामिल होना पड़ा। यद्यपि चित जगत में ये सब बाधाएं नहीं है, लेकिन हमारे गुरुवर इस मर्यादा को जानते हुए भी कभी तोड़ नहीं पाते। मैं श्री महाराज जी के सानिध्य में करीब सन 80 में हूँ। आज जब हमारे परम श्रद्धेवर श्री परम ओम गिरिवी भक्ति वेदा स्वामी वामन महाराज जी के विषय में जब मेरे गुरु भाई अपनी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे तो मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने जब गुरु महाराज को पहली बार देखा था नवदीप धाम में, मैंने उनके कक्ष में प्रवेश किया तो वहां पर वो एक ब्रह्मचारी से पूछ रहे थे कि नागमान में कौन सी विभक्ति होती है। मुझे संस्कृत का थोड़ा सा शायद ज्ञान होगा, इसीलिए वो शायद चुपचाप से मेरी परीक्षा दे रहे होंगे। ब्रह्मचारी इसका उत्तर नहीं दे सके और मैंने प्रणाम करने से पहले बोला, गुरुदेव की प्रत्यय विभक्ति होती है। उन्हें तुरंत दूसरा प्रश्न किया, भेषज माने क्या होता है? तो मैंने कहा औषध होता है। तो उन्होंने उस ब्रह्मचारी से कहा, हमने तुमसे पूछा था। ये मेरा उनका प्रथम परिचय था। उन्होंने पता नहीं मेरे हृदय के किस आवरण में अपने प्रति ऐसा कौन सा भाव देख लिया कि उस दिन से जो मेरे पर कृपा वर्षण किया, मेरे हृदय के सारे कलमश को दूर करके जो कुछ भी मैं आज हूं उनकी कृपा कटाक्ष का फल है। यद्यपि निश्चित रूप से ये सब हमारे गुरु के अनुग्रह में है। जब जब मेरे गुरुदेव विदेश चले जाते हैं तो मैं घबरा जाती हूँ, मैं रुकती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? यदि मैं जानती हूँ कि फिर जैसे वो कहीं भी नहीं है तो मैं हमेशा दिसंबर में गुरु महाराज के पास चली जाती थी। मुझसे कहा जाता था गुरुदेव किसी से बात नहीं करते। मुझे उन लोगों पर हंसी आती थी क्योंकि जब भी मैं जाती थी वो मुझसे बड़ी खुशी से बड़ी प्रसन्नता से मिलते थे। यहाँ सब ब्रह्मचारी सब लोगों ने देखा होगा, सबको छोड़कर उनका कृपा वर्षण मेरे ऊपर बराबर रहता था, उनकी आंखें हटती नहीं थी। मैं कभी कभी सोचती रहती थी आखिर ऐसा क्यों। राजा रानी चैतन्य महाप्रभु की अनुगति में ये कौन सी कृपा मेरे ऊपर करने जा रही है? जब जयपुर में वहां पर उपस्थित थे तो मुझे अंदर बुलाया और आज इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी राधा कृष्ण और गौर गदाधर का साथ साथ भजन करना। मैंने सोचा था अपने गुरुदेव से पूछूंगी कि गुरु जी इसकी व्याख्या मुझे बताइए। बाद में ग्रंथों में मैंने सुनने पाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि दूसरे दिन तुम मुझसे मंगला में प्रातःकाल मिलने आना। जब मैं दूसरे दिन 4 बजे जयपुर में पहुंची तो उन्होंने मुझे बताया, तुमने मेरा जीवन देखा, अपने पलंग के ऊपर बैठे हुए श्री मंदिर की तरफ इशारा करके कहा, देखो मैं इन्हीं की आराधना में लगा रहता हूँ। कह रहे थे मुझसे कि कोई किसी को बंद नहीं कर सकता, यदि हृदय में तरंग है। ये जो 4 पादों में मैं बंद हूँ लेकिन मेरी आराधना उस चित जगत में निरंतर चल रही है। उन्होंने मुझे अपने श्री विग्रह जो मूर्ति अर्चा विग्रह के रूप में वहां रखे थे उसके दर्शन कराए। एक बार मेरे माता पिता से मैं बिछुड़ गए, माता जी का उनके पास पहुंच गए, पिताजी रोने लगे, बिटिया कहाँ चली गई, मेरी माँ रोने लगी। तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, आधे घंटे में आ जाएगी। मेरे पिताजी बोले कि पता नहीं, कि कुछ दिन के बाद से वो उनके इतने श्रद्धावनत हो गए कि ठीक आधे घंटे में मैं वहां पहुंच गई। श्री महाराज अट्टी मट्टी चरित्र है, चित्त चरित्र की वस्तु है, उनसे किसी के विषय में कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। वो एक ऐसी लीला कर रहे थे, क्योंकि जानबूझकर किसी से ना बोलना, जानबूझकर किसी से बोल लेना, एक ऐसे सिद्धांत की शिला, एक ऐसे हिमालय जिसको कोई हटा नहीं सके, चैतन्य संप्रदाय की ऐसी जमी हुई मूर्ति थे वो। उनको देख कर ही किसी भी जन्म में जिसने जरा भी भाग किया हो उसका हृदय पूरा की पूरा बदल जाए, ऐसी गांधी पूर्ण व्याख्या है। और किसी भी क्षण में सिद्धांत के साथ कोई सामंजस्य नहीं, जो नियम है उस नियम पर वो अटल रहेंगे, जो उनके सिद्धांत हैं, और जो कुछ भी वो बात बताएंगे उसमें बड़े उनका अन्वय और व्यतिरेक रहता था। खाली अन्वय से बात नहीं करते थे, उसके शास्त्रों में ये लिखा है, साथ में ये भी लिखा है कि ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से उनके समझाने का ढंग था। और यदि कोई बात ऐसी कहते थे, देखते थे कि श्रोता को कुछ जिज्ञासा सी हो रही है, तो बड़े आराम से कहते थे वो, मैं नहीं कहता, ये शास्त्रों की बात, हम नहीं कहते, शास्त्रों में लिखा है। और उसके बाद अंग्रेजी भाषा का उनका ऐसा ज्ञान कि बड़े बड़े शेक्सपियर उनको पूरा रटा पड़ा था, यद्यपि शेक्सपियर से उनको क्या लेना देना शेक्सपियर के साहित्य से, बड़े बड़े अंग्रेज भी उतनी भाषा नहीं जानते, कोई से ऐसा पुराण नहीं, कोई सा वेद नहीं, उपनिषद नहीं जिसका ज्ञान उनको ना हो। एक श्लोक था पीतवा पीतवा गुना पीतवा, मैं वो श्लोक आ रही रही थी कि उन्होंने उसका पूरा श्लोक आ गया, जो मुझे अभी तक स्मरण भी नहीं हुआ। तो वो इस जगत की वस्तु थे नहीं जो हम इस वाणी में या इस जगत में उनकी व्याख्या कर सकते। श्री गुरुदेव इतनी सारी परेशानियां होने पर भी दिसंबर में बार बार मुझे दर्शन देते रहे। जब कभी मैंने रुपया भेंट करने की कोशिश की, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, और वो ऐसी निश्चल हंसी हंसते थे। महाराज गोकुलानंद जी मंदिर में उन्होंने कहीं मेरा नाम देख लिया तो हंस हंस कर कहते थे मधु खंडेलवाल नाम लिखा है। मैं कहा महाराज जी इस नाम पर आपकी लिखा पड़ जाए तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। कभी भी उन्होंने किसी भी भक्ति की उपेक्षा नहीं की, और स्त्रियों के ऊपर, क्योंकि स्त्रियां भावुक होती हैं, तो मुझे सिद्धांत से नहीं, उन्होंने भावों से पाला पोसा, मेरी हर भावना का उन्होंने लालन पालन किया। इतने लाल से क्या कोई साधारण माता पिता भी पाल सकते हैं? उनका चरित्र का वर्णन सुनना भी हमारे पुण्यों का फल है। मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं बॉम्बे से अभी आऊंगी और उन्हीं के विषय में हमें चर्चा चल रही होगी। जब मैं भागवतार मरीची माला लिख रही थी, महाराज जी मेरे अंतिम तीन श्लोक बाकी थे जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं अपने हाथ से लिखे। तभी सुबह 5 बजे कलकत्ता से फोन आया, मधु जी महाराज मैं बेहद मैं डूब गई, मैं घंटों रोती रही, मैं अज्ञान हो गई। फिर वो जो तीन श्लोक लिखे थे भक्ति विनोद ठाकुर ने, तो मैंने अपने गुरुदेव के नाम पत्र लिखा कि महाराज जी आप अपने भाई को इस व्यक्ति को समर्पित कर दीजिए। उन्होंने मुझ पर कैसी कैसी कृपा करके क्या क्या लिखवा लिया। मैं जो मायापुर माया नगरी में रह रही हूँ, इतने सारे बंधन, फिर भी गुरुवर इतनी कृपा कर रहे हैं। उनका भागवत पत्रिका में एक एक लेख जब पढ़ा जाता है तो हृदय आश्चर्य से भर जाता है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिन्होंने उनका जवाब नहीं दिया, और बड़े गंभीरतम शब्दों में, बड़े सिद्धांत के साथ और बड़े प्रभावशाली शब्दों में वो व्याख्या करते हैं। हम जिन बातों में दुविधापूर्ण और असमंजस में रह जाते हैं, उनकी एक व्याख्या का एक पंक्ति हजार हजार प्रश्नों का निस्तार कर देती है। उनकी हर वाणी में लगता है कि सरस्वती प्रभुपाद की वाणी बोल रही है, भक्ति विनोद ठाकुर की वाणी बोल रही है, संबंध अभिनय प्रयोजन तत्व से बाहर की वो बातें नहीं करते थे। यद्यपि वो भी तत्व और श्रृंगार रस को उन्होंने बहुत अधिक नहीं बोला, उस रस को उन्होंने छुपा कर रखा, जैसे कि हमारे गुरु का आदेश है, और जैसे कि राधा रानी हमें हमारे गुरुवर महाराज जी की कृपा से वो रस थोड़ा थोड़ा सा आस्वादन करा रही है, उन्होंने उस रस को छुपा कर रखा। लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उन्होंने हृदय में इस तरह का अवश्य संचार किया, ये तो ये कभी भी संभव नहीं था। हमारे परम पूज्य जो हमारे परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज का जो शिष्य था, उन्होंने उसका पालन करते हुए और परम गुरुदेव प्रभुपाद जी का जिन आदेशों का पालन करके उन्होंने व्याख्याएं की, वो हमें अपने हृदय में हमेशा हमेशा स्मरण करनी चाहिए। और हमें याद रखना चाहिए इस जगत से बहुत ऊपर उठकर आध्यात्मिक ही नहीं, सूक्ष्म जगत में ही नहीं, हमें चित्त जगत में रहना होगा। इस संसार के सारे प्रभाव दोषों अवगुणों का सबको उल्लंघन करके हमें उनके समान चट्टान की तरह बन जाके खड़ा हो जाना होगा, तब उनकी कृपा मिलना असंभव नहीं है।
रसानंद दो शब्द बोलो, अधिक नहीं समय हो गया है, बहुत अच्छा।
ओ माय ज्ञान के मेरा मदस्त ज्ञानांजन चला गया चक्षुर मिलितम जीना तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत बाहुस्वामी नामिने। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद बद्रीलाभ ऋषि विष्णुपाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री गुरु श्री भक्ति गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद धर्म परिव्रत का आचार्य चतुर्वेदी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज मित्रिलाभ श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता। उपस्थित हृदय पाद वैष्णवी सबके चरणों में वैराग्य प्रणाम करता। अभी अभी हम लोग ने श्री गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य संबंध में श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज को दिव्य चरित्र को वर्णन विभिन्न उनके शिष्य वर्गों को मुखारविंद से विभिन्न दृष्टिकोण से हम लोगों ने बहुत कथा श्रवण किया है। आज हम लोग बड़े सौभाग्य वाले हैं वैष्णव का गुणोत्थान एवं उनको अतिमर्द चरित्र को वर्णन कुछ श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रील राय रामानंद महाप्रभु प्रश्न करते हैं कहते बता तो राय दुख मन में कौन दुख है गुरुदर, जगत में बहुत दुख है लेकिन सबसे दुख में सबसे बड़ा दुख क्या है। उसको उत्तर में राय रामानंद उत्तर देते हैं कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी गए। जितने भी जगत में बहुत सारे दुख है, पुत्र मरा गया, पति मारा गया, अपना बिजनेस खराब हो गया, जितने भी जगत में बहुत दुख है लेकिन राजमानंद करते हैं लेकिन सबसे भी ज्यादा बड़ा दुख है जब किसी वैष्णव का विरह, क्योंकि वैष्णव ही उन लोगों को भगवत भक्ति जगत में हमको अग्रसर करा सकते हैं। उनको हरि कथा ही हमें जीवन दान करके भगवत पाद पद्मों को प्राप्त करा सकता है। इसलिए जितने सारे शास्त्र है सारे शास्त्र एक स्वर से साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्वसिद्ध है सदा प्रसंगात्मा समिगौ इसलिए जितने शास्त्र है सारे शास्त्र में केवल वैष्णव ही बताते हैं। जगत में आज हम लोग बड़े दुखी है महाराज के, हम लोग को महाराज से बड़े दूर हो गए। वो उनको पास में जब जब भी जाता था मेरे बन याद करते थे और जाते ही तरह तरह से सुंदर सुंदर हरी कथा सुनाया करते थे। हम लोग बहुत वैष्णव देखे हैं, लेकिन महाराज जैसे जगत में बड़ा विरल है। शास्त्र में हम श्रवण करते हैं कर्म का कामिनी प्रतिष्ठा वाक्य छाई आज हजारे सहित वैष्णव जो तीर ये संपूर्ण रूप में महाराज के शरीर में देखने को मिलता था। कनक पैसा थे महाराज कभी बैंक में कभी नहीं गए। महाराज बोलते थोड़ा पकेट ही ये बैंक है। और शास्त्र में जो बताया रक्षति की विश्वास गोत्रित वर्णन तथा ये एक वैष्णव का विशेष लक्षण है। कभी भी पैसा बैंक में जमा नहीं की क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था हम भगवत भजन कर रहे हैं जरूर हमें भगवान जरूर रक्षा करेंगे। इसलिए उनको पैसा के प्रति उनको कोई लोभ नहीं था। हम लोग देखा जब अपने मथुरा में था जब किसी किसी मंदिर में जाते थे उनको प्रणाम मिलता है शिष्यों से। जो प्रणाम जहाँ पर मिलता था वो वहां से एक पैसा लेकर नहीं जाते थे। उसी पैसा को वो प्रणाम बॉक्स में डाल करके चले जाते थे। जब मथुरा में आए में था महाराज कुछ देने के लिए चाहे तो महाराज से लेने के किया जो कुछ मिला था वहीं पर छुपा करे किसको बोल करेंगे नहीं हमने सेवा की। हम चाहते हैं जब हमको सेवा करें उसको दिखा करेंगे। वो कभी दिखा करके नहीं करते थे किसी समय छुपा करे कब प्रणाम का आपने सारे पैसा डाल कर चले। इसलिए पैसा का प्रतिदिन उनको और उन्होंने बहुत सारे शिष्य वर्ग उनको देते जो कि महाराज उनको शिष्य लोगों को भी पालन करते थे पैसा दे करके किसको बोलते नहीं थे छुपा करके पैसा दे करके उनको किसी गृहस्थ शिष्यों को भी पालन करते थे। इसलिए कनक कामिनी कामिनी का प्रतिष्ठा कोई ईद खाल नहीं और प्रतिष्ठा ये एक बहुत बड़ी चीज है जगत में। कहते पुत्र परिवार स्त्री सब कुछ कोई त्याग दे सकता लेकिन प्रतिष्ठा को क्या करना बहुत बहुत कठिन है। सारा दुनिया में उसने लड़ाई झगड़ा केवल एक प्रतिष्ठा को लेकर के लेकिन महाराज के अंदर में ये प्रतिष्ठा की बिंदु मात्र भी किसी तरह का प्रतिष्ठा की लालसा ही नहीं थी। देखो गुरु जी को पूजा का समय नियम होता है गुरुपाद बंधु को पूजा से शुरू करने देखो जब उनको जन्म दिख जाता था कितने उनको शिष्य है सारा दुनिया यही चाहते सारा दुनिया हमें पूजा करे। लेकिन जब उनको जन्मोत्सव आता था हम लोग तो पहले पूजा ही कराना शुरू कर देते हैं हमें कोई पूजे पूजे लेकिन केवल गुरु जब उनको जन्मोत्सव आता था व्यास पूजा का दिन उसी दिन पता नहीं वो कहाँ चले जाते थे किसी को बोलते नहीं थे हम कहाँ चला गया। और शिष्य लोग ढूंढते हैं गुरु जी कहाँ गए गुरु जी कहाँ गए पता नहीं कहाँ गुरु जी चले गए। इसलिए मेरा कोई पूजा करे थोड़ी सी भी और जो रुको गोस्वामी का जो लक्षण बताए शांति
फिर पापड़ बेलना
था आशा बंध समुद्र करता
इसके लिए
विश्वास और भगवत भजन पर अटल रूप में रहते थे। और अव्यक्तकाल तो उनका जीवन तो एक प्रतिमा साक्षात ये श्लोक का मूर्तिमान उनको स्वरूप है। सब शिष्य लोग जानते है किस समय सोते थे और कब उठते थे उनको समझना कठिन है। शिष्य लोग बोलते थे कहते हम वहां गुरु जी प्रसाद पा लिया पास में बैठे करके शिष्य लोग बात कर रहे हैं सब लोग बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं कब सो गए सोकर उठ गए। शिष्य लोग ने पूछा गुरु जी आप विश्राम नहीं करेंगे कहते विश्राम तो हो गया कहते हम लोग इतना बात कर रहे थे तुम लोग कमरा काम कर रहे हो मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसलिए और उन्होंने अपना जीवन को हाँ जो महाराज बता रहे थे ना अपना जीवन का हिसाब रखनी चाहिए हर एकादशी से एकादशी वे रोज सोते समय सारा जीवन में सारा दिन में कितना मैंने गुरु वैष्णव की सेवा किया और दिन भर हमने क्या क्या किया है उसको रोज गिर करके सोते थे। और मान शून्यता उनका अंदर में तो मान की महाराज जानते हैं सारा दुनिया यही चाहते हैं हमें आचार्य पद मिले सारा दुनिया यही चाहते हैं हमको पोस्ट मिले ये मिले लेकिन वो सर्वसमर्थ रहते हुए भी लेकिन सब कुछ महाराज के ऊपर समर्पण कर रहे थे। बिंदु मात्र उनको मन में कोई प्रतिष्ठा की लालच ही नहीं थी। स्थिति कब बताए व्यक्ति अंदर में ये गुण दिखना बड़ा ही कठिन है। सारा दुनिया ही पूजा के लिए, सारा दुनिया में लड़ाई पढ़ाई जीत ले सब इसी के लिए, लेकिन वे सब कुछ समर्थ होते हुए भी लेकिन ये चीज को याद करना इनको अंदर में विशेष वस्तु था। महाराज कहते थे अभी तक जो वेदांत समिति में किसी तरह का इधर उधर नहीं हुआ केवल उनके गुण में, क्योंकि वो सर्वसमर्थ रहते हुए भी सब कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ नहीं करते थे। उनका अंदर की कोई प्रतिशत की वासना नहीं थी। सब कुछ जो कुछ महाराज जानते हैं, महाराज के पास में जाओ, महाराज जो करेंगे वही होएगा। इसलिए कभी उन्होंने किसी विषय को उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया, इसलिए इतना दिन तक ये टिका रहा। लेकिन अभी जब से महाराज थोड़ी मुंह बंद कर दिया, कुछ बोलना अपना अंतर दशा में अपना लीला स्मरण में डूब गए, तब भी कुछ अभी हो रहा है। अगर महाराज अगर बात बोलते अभी जो थोड़ी थोड़ी वो भी नहीं होता, अगर वो बात बोलते तो लास्ट अपना भजन में डूबे रहे अंतर दशा में, इसलिए थोड़ी इधर उधर हो गया है। शांति अव्यर्थ काल तो विरक्ति मान सुनता आशा बंद समुद्र कटा। उनका भजन में देखो कितने हरिनाम कर प्रभु तो सेवा किया, उनका सेवा किए थे। कब भी उनको अव्यर्थ में बेकार में कब भी बात करके में नहीं दिखता था, हर समय हरी कथा अपना ग्रंथ लिखकर अपना भजन साधन हरी कथा में संपूर्ण जीवन को बिताया। इसलिए एक दिन हमारे परम गुरुदेव पर ज्ञान केशव गोसाई महाराज उनको सेवा प्रतिष्ठा इतना था, एक दिन उन्होंने बोले कहते गौड़ीय वेदांत समिति में जितने सेवक है अगर उनको सेवा को एक तरफ कर दिया जाए, अगर ये बामन गोसाई महाराज की सेवा को एक तरफ कर दिया जाएगा तो दिखाई पड़ेगा सभी से इनका सेवा सर्वोत्तम होगी, सबसे ज्यादा जगन्नाथपुरी में थे। देखो भगवान के साथ क्या संपर्क है। एक दिन वहां का जब तोटा बिना एक दिन उनको स्वप्न दे विग्रह प्रतिष्ठा का समय जब थे तोटा बिना स्वयं उनको स्वप्न दे रहा है। देखो ये सेवक लोग मेरे को ये फटे कपड़ा पहन पाएगा, मेरे लिए कोई कपड़ा की व्यवस्था नहीं कर रहे, इसलिए तुम मेरे को एक कपड़ा पहन पाओ, स्वप्न दिया था गोविंद तो प्रभुनाथ जी ने। तो उन्होंने बाजार में गए नया कपड़ा खरीद लिए, नया कपड़ा खरीद करके उन्होंने कपड़ा बनाए ला करके सिलाई करके मंदिर में गए, जाकर के पूजा कर दिया कि कपड़ा ठाकुर जी का पहना हो और तुम्हारा जो पुराना कपड़ा है उसको कम से कम। तो उन्होंने एक नया कपड़ा था और बंगाल में और किसी मंदिर महाभूता भक्त का कोई मंदिर था, उस मंदिर में कहीं दर्शन के लिए बहुत पुराना मंदिर है वो मंदिर में वहां पर गए दर्शन करके आ गए, लेकिन धीरे धीरे सेवा का जो था सौष्ठव घट गया, ठाकुर के लिए बैठने के लिए सिंहासन नहीं, ओढ़ने के लिए कोई कमरा नहीं। जब आ गए ठाकुर जी को स्वप्न दिया, बोले तुम मेरे को देख कर गया, तुम मैं किसी स्थिति में रह रहा हूँ, देखा मेरे को कहाँ पर सुधार दे, इसलिए मेरे लिए किया एक ये पलट और मेरे लिए कुछ कपड़ा दे दो। उन्होंने उसको बना करके वो मंदिर में लेकर गए और वहां पर उन्होंने किया। इसलिए वहां पर मंदिर में कहीं ठाकुर का सेवा बजा के इधर उधर हो, नवदीप मंदिर में कहीं उनको भोग नहीं लगा रहे, डायरेक्ट उनको शुक्र आदेश देते हैं, कहते मेरे को देख रहे हो क्या मेरे को इलाज थी। फिर उन्होंने ठाकुर के लिए सेवा की व्यवस्था अलग रूप में की। शास्त्र में हमें श्लोक सुनते हैं मुक्ता भी विग्रह कृता भगवतम सेवंतम, मतलब एक साथ में मुक्त पुरुष कभी कभी एक साथ में बहुत स्वरूपों द्वारा वे कभी कभी सेवा करते हैं, उनको जीवन में भी दिखाई पड़ता है। कहते बंगाल में एक भक्त था, एक तिथि पर उन्होंने बहुत तरह तरह का अन्न व्यंजन बनाया, बना करके जैसे ठाकुर को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद वह प्रसाद को पुनः गुरुदेव के लिए भी हम भोग लगाते हैं। जब उन्होंने गुरुदेव के लिए भोग लगाया कि गुरु जी का ध्यान करते हैं, उसी समय उन्होंने बड़े कातर स्वर से बोले गुरुपाल भगवान आप तो यह चीज को बहुत प्यारा थे, आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर गुरुदेव रहते तो इतने खुश नहीं होते। जब उन्होंने हृदय से उन्होंने पुकारे देखा डायरेक्ट गुरुदेव हाथ खोल कर डायरेक्ट गुरुदेव प्रसाद पा रहे, फिर देखा अंतर ध्यान हो गए, फिर आश्चर्य गुरुदेव आए थे। जब मैं नवद्वीप परिक्रमा में आऊंगा फिर मैं पूछूंगा, जब नवद्वीप परिक्रमा आए तो उसको पूछा गुरु जी क्या
समय हो चुका है, ठाकुर जी का भोग भी लग चुका है, वैष्णव लोग आए हैं। मैंने संक्षेप में उस दिन कहा था कुछ, परम पूज्यपाद बावन महाराज जी हमारे शिक्षा गुरु थे। गुरु जी के अभी पार्श्व नहीं आया था, उस समय गुरु जी से हमारा पत्र व्यवहार चलता था, अंग्रेजी में चलता था। बमन महाराज जी की राइटिंग में वो गुरु जी का सब पत्र बमन महाराज जी लिखते थे। उस समय से ही हमको उनका परिचय था। मठ में आने पर भी हमारी जो जो जिस चीज की जरूरत होती, कपड़े से लेकर खाना पीना देखना सुनना, सभी पूज्यपाद बावन महाराज जी हमको देखते। गुरु जी की सेवा में भी वो लगाते थे, वो थे पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी भी। मैं दोनों का ऋणी हूँ, दोनों को अपना शिक्षा गुरु मानता हूँ। तब बावन महाराज जी के साथ में सौहार्द अधिक था, इसलिए सब समय गुरु जी की सेवा में लगे रहते थे। उनका जितना भी प्रकाशन था गुरु जी का, सब बावन महाराज जी के ऊपर निर्भर था। पत्रिका से लेकर जितने भी ग्रंथ छपे हैं, उसके बाद बावन महाराज जी के ऊपर में सब कुछ निर्भर रहता था। बस हुक्म देने की जरूरत थी, ये क्या होगा, बाकी सब करते थे। यहां तक कि प्रेस में भी स्वयं काम करते थे, तो हाथ एक बार कुचल गया प्रेस में, उस समय रक्त प्रवाहित होने लगा। गुरु महाराज जी उनके विरह में रोने लगे और कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में गए और वहां इलाज कराए। बामन महाराज जी नहीं रहते तो उनका काम नहीं चलता था। मठ के सभी लोगों को, त्रिविक्रम महाराज जी को भी वो प्रतिपालन करते थे। उम्र में छोटे होने पर भी त्रिविक्रम महाराज से एक वर्ष, चार पांच वर्ष छोटे थे, किंतु प्रतिपालन सबका करते थे, कोई भेदभाव दृष्टि नहीं रहता। वे जैसा बतलाया, तृणादपि सुने तरोरपि सही सुना मानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरि, ये गुण उनमें थे सर। कभी भी आत्म प्रशंसा करते हुए मैंने जीवन भर उनको नहीं सुना, जो कभी भी आत्म प्रशंसा कर किसी रूप में, आज के की भालो कि मंद वक्तितामी की रकम दिए छी। पूज्य पात्र त्रिविक्रम महाराज कभी कभी बोलते थे, की रकम बोले छी बोलते, किंतु पूज्य पात बावन महाराज जी कभी नहीं। दूसरों को सम्मान देते थे, भक्त वत्सल थे, शिष्य वत्सल भी थे, जैसे हमारे गुरु जी थे वैसे ही, तो सब प्रकार के गुणों में गुणी थे। आज उनके चरणों में हम लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो जहाँ भी रहें हम लोगों के प्रति प्रसन्न हों, और हम लोगों जैसे वो गुरुनिष्ठ थे उसी प्रकार से हम लोग भी गुरुनिष्ठ हो। और कल परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार्षि समद भक्ति भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी का तिरुभाव तिथि थी, हमको निमंत्रण किया गया था। मैं प्रतिवर्ष वहाँ रहने पर जाता था किंतु नहीं जा सका, तो उनसे भी 1946 से हमारा संपर्क है। जब मैं अपनी गुरुजी की सेवा करता था 1946 में चुचुड़ा में रह करके, तो वो संन्यास लेकर के वहीं पर आए और वहीं पर गुरुजी ने उनकी सेवा का भार दिया था। और उनको स्नान करने के लिए गंगा जी ले जाता, वहाँ से लाता, उनको प्रसाद इत्यादि सब देता था। जब भी कोई पुस्तक में लिखता था तो वो कहते थे ये जरूर हमको देना। तो कोई भी पुस्तक हमारी हिंदी में प्रकाशित होती थी उनको देने से बड़े प्रसन्न हो करके आशीर्वाद देते थे। जीवन के अंत में भी अप्रकट होने के 2-1 महीने पहले की कुछ दिन पहले ही मैं पुरी में उनके पास में गया, तो आंख बंद की वे तो हमको सुना जी मैं आया हूं, तो आंख खोले और आशीर्वाद दिया और हमको बहुत ही स्नेह करते थे। उनके भी चरणों में हम पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे लोग सभी हमारे ऊपर में कृपा करें, जैसे उन्होंने लोगों ने गुरु सेवा की और भगवान की सेवा की है, साधन भजन किया है, मैं उसी पथ पर रह करके विश्व में उन लोगों की वाणी का प्रचार कर सकूं, भक्ति में भी ठीक रह सकूं, ये उन लोगों के चरणों में प्रार्थना कर उनके चरणों में मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। अभी हमारे मथुरा के पूज्य हमारे तीर्थ पुरोहित श्री जमुना प्रसाद जी पधारे हैं। मथुरा का इन्होंने परिक्रमा कराया था, उस समय हम लोगों ने इनका आदर सत्कार किया था। अभी आए हैं, थोड़ा सा मुझे चलने में असुविधा होगी, आप ही पधारें।